आज है 29 सितंबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। भारतीय सेना ने किया नियंत्रण रेखा के साथ लगे इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा।
कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं।
तो पाकिस्तान ने कहा दोनों तरफ की गोलीबारी में हुई दो सैनिकों की मौत।
हमारे दो फौजी शहीद हुए हैं और 9 फौजी जो है वो जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहां से फायर आया।
सीमा से लगे पंजाब के गांव में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए हुई अधिकारियों की नियुक्ति और दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक, ये सब थोड़ी देर में। पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, इकबाल अहमद से। भारतीय सेना ने गुरुवार को भारत पाक नियंत्रण रेखा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया है, जिसका पाकिस्तानी सेना ने खंडन कर दिया है। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने गुरुवार दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकाने नष्ट करने का दावा किया। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को बुधवार रात की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान ने कथित सर्जिकल स्ट्राइक का खंडन करते हुए कहा कि भारत सीमा पार से गोलीबारी को सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय गोलीबारी में अपने 2 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की कथित सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और गोलीबारी को भारत का खुला अत्याचार बताया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस और अमेरिका को सीरिया में जारी हिंसक संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत रामजी इज़ल्दीन ने जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सितंबर 9 को जो समझौता हुआ था उसको सही तरीके से पालन करना ही सीरिया में शांति कायम करने की आखिरी उम्मीद है। उनका कहना था,
बॉम्बिंग मस्ट स्टॉप, सिविलियंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड।
बमबारी हर हाल में बंद होनी चाहिए, आम नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए, हिंसक संघर्षों पर रोक लगनी चाहिए। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की अपील को हम बार बार दोहरा रहे हैं। हम लोग इंटरनेशनल सीरिया सपोर्ट ग्रुप के सहयोगियों से आग्रह करते हैं कि वो संघर्ष को रोकने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। सीरिया मामले में संयुक्त राष्ट्र के दूत रामजी इज़ल्दीन के शब्द। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने बांग्लादेश की सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है कि वहां विपक्षी पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों को जानबूझकर प्रताड़ित कर रहे हैं। संगठन के अनुसार सुरक्षाकर्मी हिरासत में लिए गए इन नेताओं और उनके समर्थकों के पैरों में गोली मारते हैं। संगठन ने ऐसे 25 लोगों की मिसाल देते हुए कहा है कि सुरक्षाकर्मी आत्मरक्षा का हवाला देकर इन लोगों पर गोली चलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वो इन मामलों की जाँच के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक टीम को बांग्लादेश आने की दावत दें, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज दोपहर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्हीं के शब्दों में, भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के साथ छिपे आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकवादियों को मार दिया है। उन्होंने ये जानकारी दी कि ऑपरेशन बुधवार रात को हुआ और खत्म हो गया है। और क्या क्या कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बता रही हैं दिव्या आर्य।
मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं।
भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर नियंत्रण रेखा पर हाल के दिनों में हुए घुसपैठ और उस पर सेना की कार्रवाई की जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह,
कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है।
डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने साफ किया कि इन स्ट्राइक्स को अब समाप्त कर दिया गया है क्योंकि सेना का मकसद सिर्फ कार्रवाई कर घुसपैठ को रोकना था। रणबीर सिंह ने दावा किया कि पिछले समय में पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ में बढ़ोतरी हुई है। 20 ऐसी कोशिशें हुई हैं जिन्हें भारतीय सेना ने रोका है।
इन घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी हमलों के दौरान मिला सामान और सामग्री जिसमें शामिल है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये साफ जाहिर करते हैं कि उनके अंदर पाकिस्तानी चिन्ह हैं। हमने कुछ आतंकवादियों को गिरफ्त में भी लिया है जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से संबंध रखते हैं उधर के मूल निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनको पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार दिए गए थे।
डीजीएमओ ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान से कहा है कि वो पकड़े गए इन पाकिस्तानियों को कानूनी सहायता देने के लिए आजाद है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे पहले भी उड़ी और पुंछ के हमले में मारे गए उन्हीं के शब्दों में आतंकवादियों के फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल देने की पेशकश पाकिस्तान को की जा चुकी है।
मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें और अपने इलाके के अंदर शांति बहाल कर सकें।
इसी महीने नियंत्रण रेखा के पास भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी पर हुए हमले में 18 जवानों की मौत के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है तो वहीं पाकिस्तान ने इस दावे को गलत बताया है। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
भारतीय सेना ने किया सर्जिकल स्ट्राइक का दावा तो इधर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बात से इनकार कर रहा है। भारत के पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। सुनेंगे उनसे भी बातचीत, लेकिन पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों तरफ से हो रही हुई गोलीबारी में पाकिस्तान के 2 सैनिकों की मौत हो गई है। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता हारून रशीद से बात की।
पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि कोई सर्जिकल ऑपरेशन नहीं किया गया है इंडिया की तरफ से। ताहम इंडियन सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर केल, भिम्बर और लीपा जो सेक्टर हैं उस पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, यानी बिला इश्तियाल बगैर किसी वजह के फायरिंग जरूर की है। और इससे उनका कहना था कि पाकिस्तानी सेना के 2 सिपाही जो हैं वो मारे गए हैं और उनका कहना था कि ये फायरिंग जो है कल रात कोई 2:30 बजे शुरू हुई थी और सुबह 8 बजे तक जारी रही है। और उन्होंने ये भी कहा है पाकिस्तानी सेना ने कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने इंडियन इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया है। तो फौज की तरफ से ये धमकी भी दी गई है कि अगर इंडियन एग्रेशन इसी तरह हुई और अगर कोई सर्जिकल हमलों की कोशिश की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज पाकिस्तान के जो सुरक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक मीडिया को बयान इस हमले के बारे में, इस झड़प के बारे में जारी किया जिसमें उन्होंने कुछ यूं तफसील बताई।
हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहाँ से फायर आया था। इस वक्त तक हमें उस साइड पे कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आवाम को मीडिया के ज़रिए कि हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं।
ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा कि ये इंडिया की तरफ से एक सोचा समझा मंसूबा था जिसके तहत वो अपनी मीडिया और आवाम को मुतमईन करना चाह रहे हैं।
ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलग सुबह के वक्त ये सारा वाकया हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपने आवाम को, अपने मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है। और इंशाल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज फायर को वायलेट किया, तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी इंशाल्लाह ताला।
इसके अलावा जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहाँ की वादी नीलम से ये इत्तला आ रही हैं कि वहाँ की जो लोकल अधिकारी हैं उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के बायस वहाँ पर सियासी या धार्मिक जो प्रदर्शन है उन पर पाबंदी लगा दी है, एक से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने गुजरने वाली एक शाहरा है उस पर भी एक वक्त में एक से ज़ायद गाड़ियों के सफ़र को भी बंद कर दिया है, मना कर दिया है। और साथ में पाकिस्तानी अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर सुरक्षा जो इकदाम हैं वो मजीद लिए गए हैं, और अगर ऐसी फिर सूरत हाल दरपेश हुई तो पाकिस्तानी सेना उसके लिए तैयार है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत की इस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि अगर भविष्य में ऐसी कार्रवाई हुई तो इसका जवाब दिया जाएगा। ये थे हारून रशीद। इधर भारत के पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक का कहना था कि जो देश चरमपंथ से जूझ रहे हैं वे ऐसी कार्रवाई करते हैं। हमारे सहयोगी विनीत खरे से बात करते हुए पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक ने इस कार्रवाई को सही बताते हुए कहा,
मैं तो ये समझता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने कारगिल वॉर में अपनी तरफ की थी, अब कारगिल वॉर नहीं है परली तरफ हो सकता है की हो, मेरे ख्याल में शायद की भी होंगी, लेकिन वो भी एक लेजिटिमेट काउंटर टेरर एक्शन है। आफ्टर ऑल मुझे बताइए कौन सा देश है दुनिया में जब ऐसी जो चीजें सहता जाता है इतने साल के लिए तो वो फिर काउंटर टेरर स्ट्राइक्स जो होती हैं वो दूसरे देश में फिर करनी पड़ती हैं कभी।
ये भी क्लैरिटी नहीं है, आपको भी क्लियर नहीं है कि एलओसी क्रॉस किया गया है या नहीं किया गया है?
मैं समझता हूँ कि शायद किया है।
ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें किया गया है?
हाँ, सारे देश जो टेररिज्म को सह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं। अमेरिका ने ऐसा एक्शन अफगानिस्तान में लिया, लोगों ने सीरिया में लिया, लोगों ने किसी भी देश में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं जब बाकी सारी दुनिया कर रही है।
जी, लेकिन इसका फॉलो अप क्या होना चाहिए जनरल मलिक? क्या एक स्टैंड अलोन, एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब आपको क्या लगता है कि इसका फॉलो अप होना चाहिए?
ये तो है जब इम्पैक्ट को देखने में और समझने के बाद में ही फैसला किया जा सकता है।
जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया है जनरल मलिक, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? क्योंकि उन्होंने टोटली डिसमिस कर दिया है, कहा है कि जो नॉर्मल फायरिंग होती है वो हुआ है, ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है।
हमको उनसे कोई इस चीज के ऊपर क्या हम कह सकते हैं, जो उनकी मर्जी आती है। कारगिल वॉर के बाद में उन्होंने बोला था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सारे मुजाहिदीन हैं, और फिर आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है कि कोई जिहादी कोई मुजाहिदीन नहीं थे, वो सारी पाकिस्तान आर्मी का था। तो इस वक्त उनकी बातों के ऊपर विश्वास मैं नहीं कर सकता।
पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक से बात कर रहे थे विनीत खरे। जहां एक तरफ भारत की तरफ से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह की कार्रवाई पहले भी हुई हैं, खास तौर से भारत की तरफ से। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने रक्षा विशेषज्ञ अजय सहानी से यही सवाल पूछा।
देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक में एक तो ये पहली बार है कि ये अक्नॉलेज की गई है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल या कोई भी सीमा पार करके कोई ऑपरेशन किया हो। ऐसे ऑपरेशन
यानी पहले हुए?
बेशक हुए हैं, कई दफ़ा हुए हैं, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं एक रूटीन रिस्पांस होता था जब उस तरफ से कोई बहुत ही बुरा हमला होता था। लेकिन ये पहली बार है कि इसको ऑफिशियली अक्नॉलेज किया गया, माना गया। सरकार ने न सिर्फ माना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका डिटेल दिया है, न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देके डिटेल दिया है, उससे पहले उन्होंने डीजीएमओ पाकिस्तान को फोन करके बताया कि हमने आपकी तरफ ये ऑपरेशन किया है। तो इस किस्म की चीज इससे पहले कभी नहीं।
क्या भारतीय सेना या फौजों ने या सरकार ने यह फैसला दबाव में लिया होगा? एक जबरदस्त सी पब्लिक ओपिनियन बन रही थी भारत ने पिछले कुछ दिनों से, नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि उड़ी हमलों के पीछे लोग हैं वो दे विल नॉट गो अनपनिश्ड।
मेरे मुताबिक ये जो ऑपरेशन کو جس طرح سے اس وقت پبلیسائز کیا جا رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد جتنا اس طرف نقصان پہنچانا تھا اتنا ہی تھا کہ بھارت میں جو پولیٹیکل کانسٹیٹیونسی ہے اس کو اپیز کرنا یا اس کی طرف اس کا رخ بدلنا، کیونکہ ایک طبقے میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ سرکار فیل ہو رہی ہے، جو اس نے وعدے کیے تھے پاکستان کے بارے میں وہ پورے نہیں کر رہے ہیں، تو نقصان اس طرف ویسے بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا اگر صرف بات یہ تھی کہ اس طرف کو جواب دینا تھا تو اس طرح سے جواب پہلے بھی دیا جاتا تھا۔ یہ جو اس کو پبلسائز کرنے کا جو خیال ہے یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ایک اس کا مقصد پرائمریلی پولیٹیکل،
ایک طرح سے کیا یہ ایک پولیٹیکل اور مارکیٹنگ گیمک ہے کیا؟
نہیں، میں اسے مارکیٹنگ گیمک نہیں کہوں گا، اس کا اکیلا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایک مقصد ضرور ہے کہ ڈومیسٹک کانسٹیٹیونسی کو بھی ایڈریس کیا جائے، لیکن اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا پاکستان پہ بھی اثر اور انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہے۔
نقصان کیا ہو سکتا ہے اس کا، کیونکہ ایک طرح سے ایگریشن دکھایا ہے انڈین گورنمنٹ نے اور کھل کر جیسے آپ نے کہا ایکنالج بھی کیا ہے۔
دیکھیے، نقصان تو آپ ایک ایسکلیٹری لیڈر مانی جاتی، اس میں رسک ہے، اگر انہوں نے جواب بہت منہ توڑ دیا پھر ہمیں ان کو اتنا ہی بڑا جواب دینا پڑے گا یا اس سے بڑا جواب دینا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں یہ دھیرے دھیرے یدھ کی طرف جا سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان میں اگر یدھ ہوتا ہے تو ہر آدمی کے دماغ میں یہ ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا تو پاگل ہے ہی، تو نیوکلیئر ویپنز کا بھی استعمال آ سکتا ہے، یہ ایک ڈر ہے ہم میں۔
پہلے بھی ہوئی ہے سرجیکل اسٹرائک، یہ کہنا ہے سرکشا وشیشجیہ اجے سہانی کا۔ حالانکہ بھارت کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ سرجیکل اسٹرائک کس طرح کی تھی۔ ادھر پاکستان نے سرجیکل اسٹرائک کی بات سے انکار کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ سرجیکل اسٹرائک ہوتی کیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے سہیوگی ونیت کھرے نے اس رپورٹ میں۔
کیمبرج ڈکشنری کے مطابق سرجیکل اسٹرائک ایک سینی حملہ ہوتا ہے جو کسی ٹھکانے پر کیا گیا ہو۔ سرجیکل شبد میڈیکل کے سرجری شبد سے آیا ہے۔ سرجیکل اسٹرائک میں چھوٹے ہتھیاروں کا پریوگ کیا جاتا ہے۔ سرجیکل اسٹرائک کا سب سے مشہور ادھارن شاید پاکستان کے ایبٹ آباد میں چرمپنتھی سنگٹھن القاعدہ پرمکھ اسامہ بن لادن کے ٹھکانے پر حملہ تھا۔ سوسائٹی فار پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر کامڈور ادے بھاسکر کے مطابق سرجیکل اسٹرائک کرنے والا پکش اپنے ادیش، وقت اور جگہ کو سیمانکت کرتا ہے اور اس میں طاقت کا نیانترت طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔
جو آبجیکٹو ہے، جو ٹائم ہے اور جو اسپیس ہے، تینوں کو بہت ہی ایک چھوٹے دائرے میں اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بھی اسٹرائک ہوتا ہے وہ یوز آف فورس بہت ہی کنٹرول طریقے سے، کیلیبریٹڈ طریقے سے اس کو پریوگ کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ فریز کو استعمال کرتے ہیں سرجیکل اسٹرائک، دوسرے پکش کو یا جو بھی آپ کے جس کے اوپر یہ سرجیکل اسٹرائک کیا جا رہا ہے، اس میں ایک پرکار کا سنکیت بھی ہے کہ اس کا آبجیکٹو کافی ڈیفائنڈ اور چھوٹا ہے۔
ادھر ریٹائرڈ میجر جنرل ایان کارڈوزو کہتے ہیں،
دیئر از اے پرنسپل آف وار کالڈ مینٹیننس آف مومنٹم۔ ابھی تو پاکستان از آف بیلنس، وی شوڈ کنٹینیو ٹو میک مور سرجیکل اسٹرائک۔ کاروائی جو کیا ہے اچھی کاروائی کی، لیکن اس کے ابھی تو اور بھی کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بالکل آف بیلنس کر کیا جائے۔
لیکن انتراشٹریہ کوٹ نیتی میں اسے کیسے دیکھا جائے؟ کیا اسے ایک دیش کا دوسرے دیش پر حملہ مانا جا سکتا ہے؟ کامڈور ادے بھاسکر،
ابھی جو بھارت نے بار بار کہا ہے کہ یہ ہم نے ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کے خلاف کیا تھا، یعنی کہ پاکستان کو ابھی اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی جو ہے اس کے اوپر کسی پرکار کا ایسا آبجیکٹو نہیں بنایا تھا۔ تو یہ ایک پرکار کا پاکستان کو ری ایشور کرنے کے لیے کہ بھارت جو بھی کر رہا ہے اس دشا میں نہیں ہے جیسے بار بار پاکستان چنتت ہو جاتا ہے، کہ بھارت جو ہے پاکستان کے اوپر آکرمن کرنے کے لیے کوئی پہل کر رہا ہے۔ تو اس لیے آج اگر آپ بی جی ایم او صاحب کا جو بریفنگ تھا اس کو باریکی طریقے سے اگر نگرانی آپ یا سمیکشا کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں میسج یہی تھا کہ ہمارا آبجیکٹو بہت لمیٹڈ تھا، وہ بھی ٹیررسٹ کیمپس اور انفراسٹرکچر جو بھارت کے خلاف پریوگ کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے حملہ کیا تھا۔
اب دیکھنا ہے کہ بھارتی قدم کو پاکستان میں کیسے دیکھا جائے گا اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ونیت کھرے، بی بی سی دلی۔
ونیت کھرے بتا رہے تھے سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں۔ ادھر بھارت کے راجیہ پنجاب میں سرکار نے 6 ورشٹھ ادھیکاریوں کی نیوکتی کی ہے۔ ان ادھیکاریوں کو پاکستان کی سیما سے سٹے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو سرکشت ستھانوں تک پہنچانے کے لیے سہایتا دینے کو کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی سرکار نے اسکولوں کو بند کرانے کا بھی نردیش دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ امرتسر سے رویندر سنگھ رابن۔
भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान सीमा के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक करने के दावे के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सटे पंजाब के गांव में इसका असर साफ नजर आ रहा है। पंजाब में सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर लगभग 200 गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस बंद करवाने की हिदायत की गई है। पंजाब में सरहद पर बसे गांव में स्थित गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि पंजाब के बॉर्डर के इलाकों के हालात ठीक नहीं है, इसलिए लोग एहतियातन सेफ जगह पर चले जाएं। गुरुद्वारों में हुए ऐलान के बाद अटारी, रानिया, फिरोजपुर, गुरदासपुर सेक्टर के कई गांवों के लोगों ने बच्चों और औरतों को बॉर्डर से दूर अपने रिश्तेदारों के घरों में भेज दिया है। सरकारी तौर पर जारी बयान में बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक के गांव के लोगों को अलर्ट करने के बारे में कहा गया है। नायब तहसीलदार अमरजीत सिंह ने बताया,
जिते बच्चे ड्रेन च डिगे सी ना उत्ते भोग दे उत्ते बैठे हुए सीगे। मैनू भी एज ए SDM साहब दे थ्रू मैसेज आया सी भी जिहड़े 10 किलोमीटर दे रेंज दे विच जिन्ने पिंड है उन्हां नूं जाणू करवाता जावे भी लड़ाई दा माहौल जिहड़ा कुछ उपरों आया होया ते पिंड खाली करते जाण, जरूरी समान लैके अपने पिंडां चों चले जाण। पब्लिक पिंड दा माहौल अजे तक तां पब्लिक ठीक है, कोई इहो जिही गल नहीं आई। सारे पब्लिक नूं दस्सदा गया अपने अपने घरां च लोकी चले गए हुए आ ते ओह जाके सलाह मशवरा कर रहे, फिर दिखदे अगला मसला की है।
बॉर्डर पर रहने वाले गाँव के लोगों का कहना था कि उन्हें दो तरफ से मार पड़ रही है, एक तो अपनी खड़ी फसल छोड़नी पड़ रही है, दूसरा अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है।
10 मिनट पहला सानू इथे अनाउंसमेंट हुई है गुरुद्वारा साहब, ओदे विच ये बोलिया गया भी 2-2.5 घंटे दे विच जिहड़ा ये पिंड है खाली कर दिते जान, जो भी बॉर्डर एरिए दे नाल लगते ने। सानू ये नहीं पता कदे वास्ते जो भी माहौल चल रहा है अजकल जंग का ओदे करके, ते सानू ये ऑर्डर आ गए ने भी ये पिंड खाली कर दिता जाए। जो भी हुण गरीब लोग ने अपने बच्चों नू लैके पैदल ही तुरे जाते हैं, जो तो थोड़ा बहुत अपना समान तुहाडे सामने ही है घरां वालियां लद्दिया वा। माहौल जी साढ़े वेखन च तां अं जो वेखदे अपनी ये संभाल च बहुत ज़्यादा बुरा हाल आ भी बॉर्डर एरिए ते वेख लो सरकारां की सहूलत साढ़े कोल। हुण बच्चे आ सारे स्कूल जाते ही, हाँ जी उन्हां स्कूलां च भी बंद कर दिता गया छुट्टियां उन्हां नूं भी देतियां ने, पिछों ऑर्डर दे दिता सरकार ने भी स्कूल बंद आ अपने बच्चों नूं लैके पेरेंट्स नूं लैके जिथे मर्जी जाओ। पिछे कोई कैंप नहीं सानूं दिखन दिया जी, कोई चलो जिहड़ा अमीर आ वह तो कितें जाके किसी के घर अपने रिलेटिव दे रह सकदा, जिहड़ा गरीब आ उहदे वास्ते कोई कैंप की फैसिलिटी तो होवे कित्थे जाके। जिहड़ा आटा दाल स्कीम अगे लै रहा है ओदे घर जाके 10 बंदे बैठ जाणगे, ओह कित्थों रोटी खा लैणगे।
उन्होंने 18 बंदे मारे ही, इन्होंने राती ऑपरेशन करके अपने टैलीविजन ते दसण डे भी 20 बंदे मारते आ, उहदा करके मतलब जिहड़ा तनाह आ ओह वध गया। पिंड खाली करके उन्होंने अनाउंसमेंट कीती हैगी भी अपने बाल बच्चा लै के पिछे चल जाओ।
बाबा जी डरदे मैं अनाउंसमेंट नहीं जाणियां, इह तों पिछे हट जाओ, है तो मुश्किल ही है ना, है बहुत ज्यादा। हम किसी सोचती और कोई नहीं कि करना भी किधर जाना वा, गुरु गाड़ी दसा मेहनती है।
बॉर्डर पर एहतियातन अतिरिक्त सुरक्षा बल लगा दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर गाँव को खाली करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है।
सीमा से लगे पंजाब के गांव में तनाव, ये थे रविंदर सिंह रॉबिन। भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रह रहे लोगों ने कहा है कि वे इस कार्रवाई के बाद डरे हुए हैं। उड़ी में सेना के कैंप पर हुए हमले के बाद से सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नियंत्रण रेखा के पास क्या माहौल है ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने श्रीनगर में मौजूद रियाज मसरूर से बात की।
आज जो सुबह सर्जिकल स्ट्राइक की बात आ गई तो लोगों में एक तरह का सस्पेंस देखा गया, जो बॉर्डर के करीब यानी LOC के जो बिल्कुल निकट दो जिले हैं, खास तौर से बारामूला और कुपवाड़ा, उन्हीं दो जिलों से LOC का बहुत बड़ा स्ट्रेच जो है वो जाता है। तो वहां पे जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये आशंका व्यक्त की कि 2003 में जो युद्ध विराम का मुआयदा हुआ था, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, कहीं वो टूट न जाए और उनको डर महसूस हो रहा है।
देखिए सर, खतरा तो इस बात का है कि कहीं दोनों मुल्कों की मुठभेड़ न हो जाए। उस तरह से आम जो जनता है वो काफ़ी परेशान है, खासकर मीडिया ने जो बड़ा हुआ खड़ा किया है उससे लोग के बड़े परेशान हैं।
इस बात है जंग, ये बमबारी जो है, गोलाबारी, ये हम नहीं चाहते हैं। क्या हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम क्या बॉर्डर के नीचे क्या और जाएंगे कहाँ?
हमें यही लगता है कि अगर सीज फायर फिर तोड़ दिया तो बॉर्डर के लोगों को ज़्यादा सख्ती हो जाएगी, ये परेशान हो जाएंगे, कोई मरेंगे तो अच्छा थोड़ी होगा इससे, सीज फायर खोलने से। इससे बेहतर है कि बातचीत के जरिए मसला हल हो, जितना उतना ठीक है।
जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अगर सेना जो है वो युद्ध की तैयारी करती है, शेल्टर्स बनाती है, बंकर्स बनाती है, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र में ये LOC कोई लकीर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे लाखों लोग रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर सेना के पास कोई इंतजाम है, कोई अरेंजमेंट है शेल्टर का, तो लोगों के लिए गवर्नमेंट को शेल्टर्स बनाने चाहिए।
देखो आर्मी जो है डिफेंस, उन्होंने अपना तो इंतजाम कर लिया है, बैंकर्स वगैरह बना लिए, यहाँ के लोगों के लिए कौन सा इंतजाम है?
یہاں کے لوگوں کے لیے کون سے بینکرز بنائے جہاں پہ وہ چھپ کے اپنی جان بچا سکتے ہیں؟
لیکن اس بیچ جو جموں چھیتر کے خاص طور سے جہاں سے انٹرنیشنل بارڈر ہو کر گزرتا ہے، جیسے سچیت گڑھ سیکٹر ہو گیا، اخنور سیکٹر ہے، یا اسی طرح سے کٹھوعہ میں کچھ سیکٹرز ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں، وہاں پہ جو آبادیاں ہیں، ان میں بھے جو ہے ڈر پایا جاتا ہے. اور دن میں تو کچھ ٹی وی چینلز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہاں سے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے، لیکن میری بات اپ مکھیمنتری نرمل سنگھ جی سے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ہٹانے کا ابھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے، لیکن پرشاسن کو سترک کیا گیا ہے کہ اگر ایسی کوئی استھتی یہاں کے جموں کشمیر کے بارڈرز پہ بنتی ہے تو سرکشا شیوروں کا انتظام پھر کیا جائے گا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ پنجاب اور خاص طور سے جو پچھمی ریاستیں ہیں وہاں آبادیوں کو ہٹایا جا رہا ہے 10 کلومیٹر کی بارڈر کی پٹی کے دوران.
نینترن ریکھا کے پاس ڈر کا ماحول، یہ تھے شری نگر سے ریاض مسرور. وہیں اس مدعے پر دلی میں سرودلیہ بیٹھک ہوئی ہے اور بیٹھک کے بعد کیندریہ منتری وینکیا نائیڈو نے کہا کہ سبھی دلوں کو بھارتیہ سینا کی طرف سے کی گئی سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں اوگت کرایا گیا ہے. ہمارے ساتھ لائیو اسٹوڈیو میں ہے ونیت کھرے. ونیت، کیا جانکاری ہے؟
دیکھیے، آج جو سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا گیا سرکار کی طرف سے، اس کے بعد سے وبھن پارٹیوں کے نیتاؤں کو بلایا گیا ہے، کانگریس کے نیتاؤں کی بریفنگ ہوئی ہے اور سبھی نے ان کے شبدوں میں جو سینا کی بہت تعریف کی ہے. آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں مختار عباس نقوی جو بی جے پی کے نیتا ہیں، ان کا کیا کہنا تھا.
ایک بات بہت اچھی طرح سے بہت صاف طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ بھارت سرکشت ہاتھوں میں ہے اور بھارت کی سرکشا، بھارت کا سمان، بھارت کا سوابھیمان ہمیشہ ہمارے لیے پراتھمکتا رہا ہے، پراتھمکتا رہے گا.
یہ تھے مختار عباس نقوی. یہ جو بریفنگ ہوئی ہے ڈی جی ایم او کی طرف سے ہوئی ہے، جن میں بتایا گیا کہ ایگزیکٹلی سرجیکل اسٹرائکس میں کیا ہوا، کیسے انہوں نے انجام دیا اور اس کا کیا آگے وہ کیسے دیکھتے ہیں، بہت زیادہ جانکاری نہیں، لیکن جو کچھ نیتاؤں نے آ کر باہر آ کے بتایا اس میں تھوڑا بہت پتہ چل پایا. غلام نبی آزاد کانگریس کے نیتا ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا.
بدھائی دی ہے اپنے فورسز کو، آرمی کو، کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس آپریشن کو انجام دیا اور اس سے جو ملٹنٹس تھے اس پار یو کے میں ان کو بھاری نقصان پہنچا.
اسی طرح سیتارام یچوری جو وام پنتھی نیتا ہیں، ان کا بھی کہنا تھا.
فرام آور سائیڈ آئی ہیو کنگریچولیٹڈ دی نیلامی فار دس آپریشن، گڈ، دیٹ از گڈ.
یہ تھے سیتارام یچوری اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھارتی سینا کو شاباشی دی ہے، کنگریچولیٹ کیا ہے یہ جو سرجیکل اسٹرائکس ہوئی ہیں اس کے لیے.
جی بہت بہت دھنیواد اس جانکاری کے لیے ونیت کھرے آپ کا. اور اب بات اگر کھیلوں کی جائے تو بھارت نے ڈھاکہ میں کھیلی جا رہی انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کو 3-1 سے ہرا دیا ہے. اور میرے ساتھ اس بارے میں جانکاری دینے کے لیے ہیں آدیش کمار گپت لائیو اسٹوڈیو میں. آدیش، کیا جانکاری ہے؟
جی دیکھیے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھارت نے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے. بھارت نے سیمی فائنل میں آج پاکستان کو 3-1 سے مات دی. ادھر کوریا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی چنوتی اجے جے رام کے روپ میں ہی بچی ہے. انہوں نے دوسرے دور میں آج چین کے وانگ یو جیانگ کو 40 منٹ کے سنگھرش کے بعد 21-15 21-18 سے ہرایا، جبکہ بی سائی پرنی 34 منٹ میں ہی چھٹی وریتا حاصل کوریا کے سونوان سے 21-9 21-15 سے ہار کر باہر ہو گئے. اس کے علاوہ ٹینس کے کورٹ پر بھارت کی سانیا اور ان کی جوڑی دار چیک گنراج کی باربورا اسٹرائکووا نے ووہان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے تیسرے دور میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے. سانیا باربورا کی جوڑی نے کینیڈا کی گیبریلا رابسکی اور اسپین کی ماریا جوس مارٹینیز کو 3-6 6-3 10-5 سے ہرایا. اور ادھر اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ کل سے کولکاتا کے ایتیہاسک ایڈن گارڈنز میدان میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا. یہ بھارت کی زمین پر کھیلے جانے والا 250واں ٹیسٹ میچ ہوگا.
جی، کھیل کی جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آدیش کمار گپت. اور اب کارکرم کا انت کرنے سے پہلے سن لیتے ہیں مکھیہ سماچار.
بی بی سی سماچار. بھارتیہ سینا نے گروار کو بھارت پاک نینترن ریکھا پر سرجیکل اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کا پاکستانی سینا نے کھنڈن کیا ہے. سنیکت راشٹر نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ کو سیریا میں جاری ہنسک سنگھرش کو روکنے کے لیے ہر سمبھو پریاس کرنے چاہیے. مانوادھیکار سنگٹھن ہیومن رائٹس واچ نے بنگلہ دیش کی سرکشا بلوں پر آروپ لگایا ہے کہ وہ وہاں وپکشی پارٹی کے نیتاؤں اور ان کے سمرتھکوں کو جان بوجھ کر پرتاڑت کر رہے ہیں. امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے صومالیہ کے شہر گیلکایو میں ہوائی حملے کر کے وہاں سکریہ چرم پنتھی سنگٹھن الشباب کے 9 لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن علاقے کے لوگ امریکہ ویرودھی پردرشن کر رہے ہیں اور امریکی جھنڈوں کو جلا رہے ہیں۔ بی بی سی سماچار۔
مکھیہ سماچار سنا رہے تھے اقبال احمد۔ اسی کے ساتھ دن بھر میں بس اتنا ہی۔ آپ سے 9:30 بجے گھٹنا چکر میں پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک دیجیے اجازت۔